आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के सदर मोहम्मद मुइजू से बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि दोनों मुल्कों के दरमियान कुछ वायदों पर दस्तखत किए जाएं। वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर रियासतों के वजराए आला के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती कल की जाएगी, जिसके लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। इसराइल पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास की तरफ से किए गए जानलेवा दहशतगर्दाना हमले का एक साल पूरा होने पर सख्त चौकसी बरत रहा है। और मर्दों के क्रिकेट में भारत ने ग्वालियर में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 बैन अलाक्वामी मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मालदीव के सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइजू के साथ बाहमी, इलाकाई और आपसी मफाद के बैन अलाक्वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि बातचीत के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएं। बातचीत से पहले मालदीव के सदर को राष्ट्रपति भवन में बाजाब्ता तौर पर इस्तकबालिया दिया जाएगा। वो राजघाट भी जाएंगे, जहां वो महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करेंगे। डॉक्टर मुइजू सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के साथ मीटिंग करेंगे। डॉक्टर मुइजू कल आगरा और मुंबई जाएंगे और बुध को बेंगलुरु का दौरा करेंगे। डॉक्टर मुइजू भारत के 5 रोजा दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे थे। एक रिपोर्ट।
सदर डॉक्टर मोहम्मद मुइजू का भारत के लिए यह पहला बाहमी दौरा है। इससे पहले उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनकी काउंसिल के वजरा की हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए इस साल जून में भारत का दौरा किया था। मालदीव बहर हिंद खित्ते में भारत का एक कलीदी बहरी पड़ोसी मुल्क है और सागर और भारत के पड़ोसी पहले की पॉलिसी के वजीर आजम के विजन के तहत एक खास मुकाम रखता है। मालदीव के वजीर खारजा के हालिया दौरे के बाद मालदीव के सदर का भारत का दौरा इस बात को उजागर करता है कि भारत मालदीव के साथ अपने ताल्लुकात को काफी अहमियत देता है। तवक्को है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन और अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को मजीद फरोग मिलेगा। भारत मालदीव की दिफाई कौमी फोर्स के लिए तरबियत के सबसे ज्यादा मौके फराहम करता है और उनकी 70% की तरबियत की जरूरतें पूरी करता है। सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर रियासतों के वज़राए आला के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के वज़राए आला इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। 5 मरकजी वज़रा भी जो बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर रियासतों की तरक्की में मदद देने में पेश हैं, मीटिंग में शिरकत करेंगे। कौमी सलामती के नायब मुशीर और मरकज रियासतों नीज मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेस के सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वजीर दाखला ने एक बयान में कहा कि मरकजी हुकूमत बाएं बाजू की इंतहा पसंदी की लानत को मार्च 2026 तक जड़ से खत्म कर देने का अहद किए हुए है। उसने बताया कि मरकज बाएं बाजू की दहशतगर्दी से मुतासर रियासतों की सरकारों को नक्सल सरगर्मियों के खिलाफ उनकी लड़ाई में हर मुमकिन मदद दे रही है। वजारत ने बताया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की हिकमत अमली की वजह से बाएं बाजू के तशद्दुद में 72% कमी आई है, जबकि 2010 के मुकाबले 2023 में अमवात में भी 86% कमी आई। वजारत ने यह भी कहा कि बाएं बाजू की इंतहा पसंदी अपने आखिरी मरहले में है। हिफाजती दस्तों ने 2024 में अभी तक बाएं बाजू के इंतहा पसंद 202 कारिंदों को हलाक किया है, जबकि 723 कारिंदों ने हथियार डाले हैं और 812 को गिरफ्तार किया गया है। बाएं बाजू की इंतहा पसंदी से मुतासर जिलों की तादाद में भी 2024 में कमी हुई है, अब इनकी तादाद 38 हो गई है। वजारत ने बताया कि हुकूमत ने कई इकदाम किए हैं, जिसमें सड़क और मोबाइल राब्तों में इजाफा भी शामिल है, ताकि मुतासिरा रियासतों के सबसे दूर इलाकों तक तरक्याती स्कीमें पहुंचाई जा सकें। उसने कहा कि इन मुतासिरा इलाकों में 14,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों की तामीर की जा चुकी है और तकरीबन 6,000 मोबाइल टावर नस्ब किए जा चुके हैं। हरियाणा में सभी 90 असेंबली हल्कों के लिए वोटों की गिनती के 90 मराकज कायम किए गए हैं। आला इंतखाबी अफसर पंकज अग्रवाल ने कहा कि ये पोलिंग मराकज तमाम 22 जिलों के जिला हेडक्वार्टर्स में कायम किए गए हैं। कालका और पंचकुला हलकों के लिए डाले गए वोटों की गिनती यहां के गिनती मरकजों में की जाएगी और नारायणगढ़, अम्बाला छावनी, अम्बाला शहर और मुलाना सीटों के लिए वोटों की गिनती अम्बाला में वोटों की गिनती के 4 मराकज में की जाएगी, जबकि यमुनानगर जिले की 4 सीटों के लिए वोटों की गिनती यमुनानगर के गिनती मराकज में की जाएगी। जनाब अग्रवाल ने बताया कि सभी कमरों में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और 3 सतही सिक्योरिटी के तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की निगरानी की जा रही है। हरियाणा पुलिस और नीम फौजी दस्तों को इन कमरों की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के लिए वोटों की गिनती कल की जाएगी। वोटों की गिनती के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में 10 साल के वक्फे के बाद हाल ही में 3 मरहलों में कराए गए इंतखाबात के दौरान राय दहिंदगान ने बड़े पैमाने पर अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। 2019 में दफा 370 और 35A की मनसूखी के बाद मरकज के जिर इंतजाम इलाके में पहली मुंतखबा हुकूमत की तश्कील अमल में आएगी। तफसील हमारे नामा निगार से।
नबे रुकनी जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए कल होने वाली वोटों की गिनती के लिए जम्मू कश्मीर के तमाम जिला हेडक्वार्टरों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए हैं। 2019 में दफा 370 और 35A को हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली मुंत हुकूमत की तश्कील की राह हमवार हो गई है। अब 873 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है और ये देखना बाकी है कि कौन से मेम्बरान जीतकर जम्मू कश्मीर असेंबली में पहुंचेंगे और कौन सी पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब होगी। दरियासना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पांडुरंग के पोले ने कहा कि कल वोटों की गिनती के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। खबरनामे के लिए श्रीनगर से सुनील कोल।
पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में शिमाल मशरक तेजी से तरक्की के रास्ते पर गामजन है। एक खबर एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में वजीर आजम ने कहा कि मणिपुर में कुछ वाकयात को छोड़कर पूरे शिमाल मशरकी खित्ते में अमन का दौर दौरा है। उन्होंने कांग्रेस पर भी ये इल्जाम आयद करते हुए नुक्ताचीनी की कि उसने खित्ते की तरक्की के लिए कोई ठोस काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि जब से वजीर आजम मोदी ने ओहदा संभाला है तकरीबन 10,000 दहशतगर्द हथियार डालकर असल धारे में शामिल हो चुके हैं।
पूर्वोत्तर के लोगों का आवाज को सुनने वाला दिल्ली में कोई नहीं था। तो मोदी जी आने के बाद 10,000 से ज्यादा मिलिटेंट जो है हथियार के साथ में सरेंडर किया है और मुख्य धारा में जुड़ गए हैं। मणिपुर में जो 2 समुदाय के बीच में घटना हुए हैं अनफॉर्चुनेट, उसको छोड़ के पूरे नॉर्थ ईस्ट में शांति है और अभी जिस तेजी के साथ नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ रहा है तो कुछ सालों के बाद में नॉर्थ ईस्ट देश के अन्य भागों के साथ में अब बराबर में पहुंच जाएंगे।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जनाब नरेंद्र मोदी के सरकारी ओहदे पर रहते हुए आज 23 साल पूरे हो गए हैं। 2001 में आज ही के दिन जनाब मोदी ने पहली बार गुजरात के वजीर आला का ओहदा संभाला था। गुजरात के वजीर आला के तौर पर जनाब नरेंद्र मोदी के इकदामात से तहरीक हासिल करते हुए मरकज में एनडीए हुकूमत ने कई फलाही प्रोग्राम शुरू किए, अक्सर गुजरात मॉडल के नाम से मकबूल है। ये इकदाम पानी के तहफ़ शजकारी मुहिम, आईन का जश्न मनाने, रिवायती मसनूआत का फरोग और खेल कूद की सकाफत की हौसला अफजाई से मुतालिक हैं। जनाब मोदी ने हुक्मरानी में जन भागीदारी या आवाम की शराकत पर जोर दिया। वजीर आजम के जरिए शुरू किए गए जल जीवन मिशन को 2004 में शिमाली गुजरात के पानी की किल्लत वाले इलाकों के लिए शुरू किए गए सुखलाम जल अभियान के तजर्बे से तहरीक मिली है। इसमें भारत के लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए नर्मदा नदी के पानी को गुजरात लाने, नदियों को आपस में जोड़ने और बारिश के पानी को जमा करने पर तवज्जो मरकूज की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की माली पॉलिसी से मुतालिक कमेटी एमपीसी की 3 रोजा मीटिंग आज शुरू होगी। माहिरीन का अंदाजा है कि आरबीआई सूद की बुनियादी शरों में कोई तब्दीली नहीं करेगा। आरबीआई के लिए खुराक के मैदान में इफरात जर का अंदेशा और इक्तसादी तरक्की गौर व फिक्र का मौजू है। हुकूमत ने आरबीआई को यह काम सौंपा है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि सारिफिन की कीमतों के इंडेक्स पर मबनी खुर्दा चीजों की इफरात जर 4% की बर्दाश्त की हद में रहे और इसमें कमी बेशी का महज 2% इम्कान बाकी रहे। गुजरात सरकार आज से विकास सप्ताह मनाएगी। इसका एहतमाम जनाब नरेंद्र मोदी के 2001 में आज ही के दिन वजीर आला की हैसियत से ओहदा संभालने के बाद से रियासत के तरक्की के सफर को मनाने के लिए किया जा रहा है। काबीना वजीर ऋषिकेश पटेल ने मीडिया को बताया कि हफ्ते के दौरान कई प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे जिनमें अहम मकामात पर विकास वॉक शामिल हैं। اس دوران ریاست میں 3,500 کروڑ روپے کا ترقیاتی کام بھی شروع کیا جائے گا۔ نریندر مودی حکمرانی سے متعلق اپنے تجربات کو مشترک کر کے لوگ ہیش ٹیگ وکاس سپتاہ کے ذریعے اس جشن میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ایک رپورٹ۔
ریاست کی ترقی میں نریندر مودی حکومت کی زبردست خدمات اور تعاون کے بارے میں عوام کو آگاہ کرنے کے لیے ریاستی سرکار 23 اہم مقامات پر وکاس واک کا اہتمام کرے گی، جسے اس کی یکسر تبدیلی لانے والے اقدامات کے طور پر شناخت کی گئی ہے، جس میں مجسمہ اتحاد، احمد آباد ریور فرنٹ، موڈھیرا سن ٹیمپل، گفٹ سٹی شامل ہیں۔ وزیر اعلیٰ بھوپیندر پٹیل اپنے سبھی وزراء کے ہمراہ آج گاندھی نگر میں بھارت وکاس پرتیجیا بھی لیں گے۔ لوکپتی دیدی اور ڈراپ دیدی کو اسکولوں میں مدعو کیا جائے گا تاکہ وہ طلبہ کو لیکچر دے سکیں۔ ریاست کی معاشی ترقی کو نمایاں کرنے کے لیے ریاست میں گجرات وکاس اختراعی ایکسپو کا بھی اہتمام کیا جائے گا تاکہ اسٹارٹ اپس، نئے تخلیق کاروں اور صنعت کاروں کی خدمات کو نمایاں کیا جا سکے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر جیتیندر سنگھ نے کہا ہے کہ خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کے لیے نئے پروجیکٹوں کے فنڈ کے واسطے 1,000 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ نئی دلی میں مودی حکومت کی تیسری مدت کار کے پہلے 100 دن کی اہم خصوصیات کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ ملک میں گزشتہ 10 سال میں خلا سے متعلق اسٹارٹ اپس کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اس طرح عالمی ایکو نظام میں بھارت تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ خلا کے سیکٹر میں نریندر مودی حکومت کی طرف سے 100% براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سے نئی پہل اور نئے صنعت کاروں کو ایک بڑی تقویت ملے گی۔ اسرائیل پچھلے سال 7 اکتوبر کو حماس کے جان لیوا دہشت گردانہ حملے کا 1 سال پورا ہونے پر سخت چوکسی برت رہا ہے۔ اسرائیل کی دفاعی فوجوں نے بتایا کہ اسے اندیشہ ہے کہ غزہ کی طرف سے لمبی دوری کے راکٹ داغے جائیں یا دیگر حملے کیے جائیں۔ اسرائیل نے غزہ کے قریب مزید فوجیوں کو تعینات کیا ہے۔ اسی دوران ایک بندوق بردار نے اسرائیل میں بیر شیبا کے مقام پر ایک بس اسٹیشن پر حملہ کیا، جس میں ایک خاتون ہلاک اور 10 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس نے فائرنگ کے اس واقعے کو ایک دہشت گردانہ حملہ قرار دیا ہے۔ حملہ آور کو مبینہ طور پر، جس کا تعلق بدوی اقلیت سے ہے، فوجوں نے ہلاک کر دیا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے شمالی سرحد کے نزدیک IDF فوجیوں کے اسٹیشن کا دورہ کیا، جو حزب اللہ کے گڑھ سے محض کچھ میٹر ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
اسرائیلی فوج بھی پرعزم ہے۔ IDF کے چیف آف جنرل اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل ہرزے حلوی نے فوجیوں اور ریزرو فوجیوں سے خطاب کیا، جس میں انہوں نے پچھلے سال 7 اکتوبر کی ناکامی کا اعتراف کیا، لیکن اس وقت سے حاصل ہونے والی پیش رفت کو بھی نمایاں کیا۔ حلوی نے زور دیا کہ لڑائی جاری ہے، اس دوران اسرائیل کی فوج نے اپنے دشمنوں کو کافی نقصان پہنچایا ہے، خاص طور سے حماس اور حزب اللہ کو۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
پاکستان میں کل رات کراچی ہوائی اڈے سے باہر آنے کے راستے پر ایک طاقتور دھماکہ ہوا، جس میں کم سے کم 2 افراد ہلاک اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے۔ مردوں کی کرکٹ ٹیم میں بھارت نے کل رات گوالیار میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے 20 میچ میں بنگلہ دیش کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔
شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی سے شائع ہونے والے اردو اخبارات کی 6 سرخیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اخبار پرتاب کی 6 سرخی ہے، مالدیپ اور بھارت کے درمیان تعلقات مزید مضبوط ہوں گے، وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے مالدیپ کے صدر کی بات چیت۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا لکھتا ہے، بیروت کے ہوائی اڈے کے قریب اسرائیل کے فضائی حملے، اسلحہ کی سپلائی پر فرانس اور اسرائیل کے درمیان اختلاف۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس کی سرخی ہے، بھارتی فضائیہ کا ایئر شو لمکا بک آف ریکارڈز میں شامل۔ اخبار انقلاب نے سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ ایک ملک ایک الیکشن کا تصور غیر آئینی نہیں۔ اخبارات نے ممبئی میں آگ لگنے کے حادثے میں ایک ہی خاندان کے 7 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر کو بھی نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔
اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں مالدیپ کے صدر محمد معیزو سے بات چیت کریں گے، امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان کچھ معاہدوں پر دستخط کیے جائیں۔ وزیر داخلہ امیت شاہ آج نئی دلی میں بائیں بازو کی انتہا پسندی سے متاثرہ ریاستوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کریں گے۔ ہریانہ اور جموں کشمیر اسمبلی انتخابات کے لیے ڈالے گئے ووٹوں کی گنتی کل کی جائے گی، جس کے لیے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسرائیل پچھلے سال 7 اکتوبر کو حماس کی طرف سے کیے گئے جان لیوا دہشت گردانہ حملے کا 1 سال پورا ہونے پر سخت چوکسی برت رہا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔